ओम शांति, ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे ब्राह्मण जीवन में जानते हैं कि हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है, क्या है? पवित्रता। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, या कहें कि प्यूरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। ऐसे तो दुनिया में बहुत तरह की पर्सनालिटी गाई जाती हैं। जो भी इस संसार में विशेष महान आत्माएं होती हैं, उन्हें पर्सनालिटी कहते हैं। तो तीन चार प्रकार की पर्सनालिटी होती हैं दुनिया में। एक होती है शरीर की पर्सनालिटी, यानी जिनकी शारीरिक सुंदरता विशेष होती है, वो कोई भी प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, जैसे मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, या मिस्टर इंडिया है। भाइयों की भी होती है, बहनों की भी होती है। फिर उसमें जो नंबर वन आते हैं वो विश्व प्रसिद्ध पर्सनालिटी हो जाते हैं, वो हम सब जानते हैं। फिर वो कई समाज उपयोगी कार्य भी करते हैं। दूसरी पर्सनालिटी है पोजीशन की पर्सनालिटी, यानी जो ऊंच पद प्राप्त करते हैं, अब प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, या कोई साइंटिस्ट हैं, इस क्षेत्र से संबंधित कोई भी विशेषज्ञ हैं किसी भी क्षेत्र के, तो वो भी पर्सनालिटीज मानी जाती हैं, विश्व प्रसिद्ध होते हैं। और तीसरी प्रकार की होती हैं धन से संबंधित। अमीर घरानों के जो व्यक्तित्व हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे हम बिल गेट्स का नाम सुनते हैं, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, और भी हैं। ऐसे हर साल विश्व के 10 टॉप अमीर लोग कौन कौन हैं, उनकी लिस्ट निकलती है, तो वो भी दुनिया की पर्सनालिटीज हैं। और हमारी जो प्यूरिटी की पर्सनालिटी है, उनकी पर्सनालिटी एक जन्म की है। लेकिन बाबा कहता है ये जो एक जन्म की हमारी प्यूरिटी की पर्सनालिटी है, इसकी महानता सिर्फ इस जन्म की नहीं लेकिन पूरे कल्प चलती है। परम धाम में भी हम आत्माएं आदि अनादि स्वरूप, अनादि स्वरूप जो पवित्र हैं, उसमें जो पवित्रता की चमक है वो अन्य आत्माओं से ज्यादा है। जैसे आसमान में भी हम देखते हैं कि जो सितारे चमकते हैं, उनमें से भी वो सितारे हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं जो सबसे ज्यादा चमकते हैं। तो परम धाम में शिव बाबा के समीप सबसे चमकते हुए सितारे जो आत्माएं हैं, वो हम आत्माएं हैं। और फिर जब अपने आदि स्वरूप में देवताई स्वरूप में आते हैं, तो देवताओं जैसी रॉयल्टी, क्योंकि उनके अंदर जो पवित्रता है वो दिव्यता है। और इसीलिए देवी देवताओं के दर्शन मात्र से ही सबको वो पवित्रता अनुभव होती है। इसलिए बाबा उनको डबल ताजधारी कहते हैं कि एक राजाई का ताज तो है ही, लेकिन साथ में पवित्रता का भी ताज है, लाइट का भी क्राउन है। तो उनके चेहरे की जो झलक फलक है वो न्यारी है। जैसे हम ब्राह्मण जीवन में कहेंगे कि ब्राह्मण जीवन में भी जिसकी पवित्रता की स्टेज जितनी है, उतनी ही उसके चेहरे पर वो रूहानियत की झलक होती है, वो पवित्रता के वाइब्रेशंस उनके द्वारा दूसरों को फील होते हैं, होते हैं ना, महसूस होते हैं। पर मन वचन कर्म तीनों स्तर पर हमारी पवित्रता कितनी है, वो उसका आधार है। तो देवी देवताएं तो संपूर्ण पवित्र हैं, तो इसीलिए वो उनकी प्यूरिटी की पर्सनैलिटी 2 युगों तक चलती है। और फिर जब द्वापर युग में आकर पूज्य बनते हैं, देवी देवताओं की पूजा होती है, तो वो भी बहुत रॉयल्टी से होती है, विधि पूर्वक होती है। और कोई भी धर्म पिता है या धर्म नेता है या राजनेता है, यानी जो भी विश्व प्रसिद्ध हैं, उनकी धर्म नेताओं की पूजा होती है, राजनेताओं का तो गायन होता है, पूजन नहीं होता। तो धर्म नेताओं की, क्योंकि वो भी एक स्तर पर ब्रह्मचर्य का पालन तो करते हैं, इसलिए पूजन तो होता है, लेकिन देवी देवताओं जैसा पूजन नहीं होता। जितना विधि पूर्वक, यानी हर कर्म की पूजा, हर कर्म का कीर्तन करना, और वो भी साजों और बाजों के साथ और धूमधाम से, वो देवी देवताओं की पूजा में देखा जाता है। तो इसीलिए जो ब्राह्मण जीवन की पवित्रता है, वो पूरे कल्प के लिए हमें रॉयल और श्रेष्ठ बना देती है। वो पर्सनालिटी वाला, जिसे हम कहेंगे, वो प्यूरिटी की पर्सनालिटी पूरा कल्प चलती है, ब्राह्मण जीवन में तो है ही है। तो प्यूरिटी को बाबा बहुत साधारण रीति से परिभाषित नहीं करते कि केवल ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पवित्रता है, वो तो एक स्टेप है, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ साथ ये क्या है, ब्रह्माचारी बनना है। ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाला, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके चलने वाला। अभी पूरा जनवरी मास जो स्मृति मास होता है हमारा, हमने बाबा के कदम सुने हैं कि क्या ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं थी, बाबा ने जो किया उससे हमें फॉलो करना है। तो बाबा कहता है कि पवित्रता माना संपूर्ण निर्विकारी बनना, एक विकार को, केवल काम विकार को जीतना नहीं, लेकिन संपूर्ण निर्विकारी, और वो भी मोटे रूप से नहीं, विकारों के अंश वंश पर भी विजय प्राप्त करना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जो अंश वंश है, जिसको बाबा बाल बच्चे कहते हैं, यानी ईर्ष्या द्वेष घृणा लगाव झुकाव प्रभाव मैंपन मेरापन, ये सब उसके साथ, आलस्य अलबेलापन भय, ये सब जुड़े हुए हैं, उसके बाल बच्चे हैं विकारों के, इन पर भी विजय पाना। और उससे भी आगे बाबा कहता है, स्वप्न में भी, अभी संडे की मुरली सुनी ना, बाबा ने कहा पवित्रता के आधार पर ही पूज्य बनते हैं। नंबर वार पूज्य क्यों है, किन्हीं की पूजा जो है वो प्रतिदिन होती है, किन्हीं की पूजा कभी कभी होती है, किसी की मूर्ति का रोज श्रृंगार होता है, और हर समय का, यानी सुबह का श्रृंगार अलग होगा, दोपहर का श्रृंगार अलग होगा, शाम का श्रृंगार अलग होगा, और किसी का कभी कभी होता है, किसी के सामने रोज कीर्तन होता है, किसी के सामने कभी कभी कीर्तन होता है, अभी सुना ना। तो क्यों नंबर वार बन जाते हैं, क्योंकि जो पवित्रता की हमारी स्टेज है, और उसमें जितना हम मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहे उस आधार पर, तो उसमें बाबा ने स्वप्न की भी बात कही कि स्वप्न में भी अगर किसी का ब्रह्मचर्य भंग होता है, या स्वप्न में भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या या आवेश के वश कर्म होता है, या क्रोध के अंश मात्र भी व्यवहार होता है, तो भी पवित्रता खंडित होती है, यह भी बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा उसे खंडित मूर्ति माना जाएगा, यानी स्वप्न का भी इतना प्रभाव पड़ता है, बाबा ने कहा। और जो खंडित मूर्ति होती है उसे मंदिर में नहीं रखते हैं, खंडित मूर्ति को कहाँ रखते हैं, म्यूजियम में रखते हैं। म्यूजियम में लोग मूर्ति देखने जाते हैं, उसका गायन होगा कि ये इतनी पुरानी मूर्ति है, लेकिन उसका पूजन नहीं होता है। तो उसमें भी बाबा ने कहा कि पुजारी जो आपकी पूजा करते हैं, वो भी आप अगर विधि पूर्वक दिनचर्या में चलते हैं, इसको भी बाबा ने कहा, अगर दिनचर्या में अमृत वेले से रात तक जो ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या है उसमें हम चलते हैं, उसमें हमारा आलस्य अलबेलापन नहीं है, तो फिर पूजा भी ऐसी होगी। और अगर आप अमृत वेले उठने में सुस्ती करते हो, कभी उठते हो कभी नहीं उठते हो, अगर उठते भी हो तो जैसे बैठना चाहिए वैसे नहीं बैठते, सुस्ती से बैठते हैं, तो बाबा ने क्या कहा, पुजारी भी क्या करेगा, ऐसे ही काम चलाऊ उठेगा और वैसे ही आपकी पूजा करेगा। तो पूरा आधार उसके ऊपर है। तो ये पवित्रता की भिन्न भिन्न स्टेजेस बाबा ने बताई कि उसकी सूक्ष्मता क्या है, संपूर्ण पवित्रता क्या है। तो हमें चेक करना है हम कौन सी स्टेज तक हैं, हमारी पवित्रता की स्थिति में कितनी कमी है जो बाबा हमें बताता है। यहां तक कि बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प चलना ये भी अपवित्रता है। नेगेटिव संकल्प की तो बात छोड़ो, लेकिन व्यर्थ संकल्प और किसी भी कारण से अगर हमें दुख अशांति महसूस होती है, जैसे कहा पवित्रता सुख शांति की जननी है, कहते हैं ना पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो पवित्रता है यानी सदा ही सुख शांति का अनुभव होना चाहिए, पर अगर हमें दुख और अशांति होती है तो वो भी कहीं ना कहीं अपवित्रता है, इसीलिए दुख और अशांति का अनुभव होता है। हमारी जो पवित्रता की विधि है वो डायरेक्ट परमात्म विधि है। दुनिया में भी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, खास जो सन्यासी हैं या ऐसे भी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन उनकी जो विधि है वो डायरेक्ट परमात्मा की दी हुई विधि नहीं है। तो हम देखते हैं कई बार जो सन्यासी हैं वो ऐसे कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना असंभव है। ऐसे भी कहेंगे कि आग और कपूर साथ में नहीं रह सकते ना? और बाबा के बच्चे ग्रस्त में रहते हुए, परिवार में रहते हुए पवित्र रहते हैं। बाबा कहते हैं असंभव को सहज संभव कर लेते हैं। तो कैसे संभव होता है? क्योंकि बाबा ने हमें स्मृति दिलाई। क्या स्मृति दिलाई? मैं आदि अनादि शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, पवित्रता ही मेरा स्वधर्म है। तो वो स्मृति से समर्थी आ गई कि दो युगों तक आत्मा पवित्र रही है, सत्ययुग त्रेता में पवित्र ही थी आत्मा। तो जब देवताएं, देवी देवताएं पवित्र रह सकते हैं, हम वही देवी देवता कुल की आत्माएं हैं, तो हम क्यों नहीं पवित्र बन सकते? फिर दूसरी बात, हिम्मते बच्चे मददे बाप। हमने हिम्मत रखी और बाबा की मदद यानी बाबा की शक्ति भी हमें मिलती है और उससे भी वो सहज हो गया। और तीसरी बात, बाबा ने हमें प्राप्ति बताई कि इससे कितनी ऊंच प्राप्ति हमें होने वाली है। हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, हम राज्य अधिकारी बनते हैं। तो जब विश्व की बादशाही मिलने वाली है, कोई ऊंची प्राप्ति होती है, और उसके लिए कोई कठिन एग्जाम, जैसे दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए लोग कठिन एग्जाम पास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो मेहनत उनको मेहनत नहीं लगती क्योंकि वो प्राप्ति को देखते हैं कि उससे हमें कितनी ऊंची भविष्य में प्राप्ति होगी। तो यहां भी जब हम देखते हैं कि इसकी प्राप्ति कितनी ऊंची और श्रेष्ठ है और पूरे कल्प की है, केवल एक जन्म की, इस जन्म की प्राप्ति नहीं है, तो फिर हमारे लिए वो पुरुषार्थ मुश्किल नहीं होता है। कई जो सन्यासी होते हैं वो अपनी तरह से विधियां अपनाते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने अपनी पत्नी को शारदा माँ कहा, यानी हर स्त्री को माँ के रूप में देखना। आज मुरली में था, बाबा ने कहा जो सूरदास था उसने क्या किया, मेरी दृष्टि न जाए उसके लिए उन्होंने अपनी आंखें ही निकाल दी, मना वो अंधे हो गए। तो भक्ति मार्ग में उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए लोग अपने अपने तरीके अपनाते हैं, या सब में भगवान का रूप देखते हैं, स्त्री है पुरुष है सभी भगवान के रूप है, तो भगवान के रूप में ही उन पर हमारी नजर जानी चाहिए। इस रूप में हम ना देखें कि ये स्त्री है या ये पुरुष है। लेकिन बाबा ने हमें विधि दी, हम कौन है? सभी आत्मा है, और आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। और अगर शारीरिक दृष्टि से भी देखते हैं तो एक पिता की संतान हम सब कौन है? भाई बहन है, ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, हम सब भाई बहन है। तो बाबा कहता है कि भाई बहन की जो दृष्टि होती है, और या भाई भाई की जो दृष्टि होती है, वो शुद्ध दृष्टि वृत्ति होती है, पवित्र दृष्टि वृत्ति होती है। तो हमें देखना ही आत्मा को है। हमारी विधि है कि देह पर हमारी नजर ही नहीं जानी चाहिए, यानी देह से न्यारे स्वयं भी रहना है और दूसरों को भी भ्रकुटी में आत्मा ही देखना है। और अगर हमने आत्मा को न देखकर देह को देखा, तो देह को देखने से बाबा कहता है कि जैसे वो सांप को आपने छुआ, देह जो है वो सांप के रूप में है, और सांप को अगर टच करते हैं तो वो काटता है, और सांप काटता है तो उसमें विष होता है। तो बाबा हमेशा ऐसे कहते हैं कि अगर आपने देह को देखा तो आपके विकार, क्योंकि देह अभिमान विकारों की जड़ है, वो विकार को जागृत करता है, तो आप उसके किसी ना किसी पर्सनालिटी से प्रभावित होने लगेंगे। किसी की आंखें अच्छी होती हैं, किसी की नाक अच्छी होती है, किसी के बाल अच्छे होते हैं, किसी का रंग गोरा है, या किसी की क्या कहते हैं लंबा ऊंचा कद है, मतलब शरीर में जो पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं आत्मा को प्रभावित करेगी और उस पर नजर जाएगी, और अगर नजर जाएगी तो दृष्टि वृत्ति चंचल हो सकती है, जिसको बाबा क्रिमिनल आई कहते हैं। आज की मुरली में काफी बाबा ने इस बात पर कहा कि एक होती है सिविल आई और एक होती है क्रिमिनल आई। तो ब्राह्मण बनने के बाद अगर हमारी दृष्टि वृत्ति चंचल होती है किसी को देख करके, माना पुरुष की स्त्री को देख करके या स्त्री की पुरुष को देख करके, तो बाबा इसको महापाप कहता है। तो बाबा कहते हैं जब तक इतना कड़ा उसके प्रति सावधानी नहीं रखेंगे तब तक इसे बदल नहीं सकेंगे, क्योंकि हम रहते तो कलयुगी वातावरण में है ना, तो कलयुगी वातावरण का प्रभाव कहीं ना कहीं आत्मा पर आ जाता है। जो भी हम देखते सुनते हैं या जो भी व्यवहार में आते हैं, कईयों के इस तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, किसी की अगर दृष्टि वृत्ति ऐसी होती है ना तो वाइब्रेशन से भी पता चलता है कि इनकी दृष्टि वृत्ति शुद्ध नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें चंचलता है। तो फिर हमें सावधान भी रहना पड़ेगा और हमारी प्यूरिटी की पावर से उनमें भी प्यूरिटी आ जाए। यानी अगर हमारे अंदर वो पवित्रता की शक्ति है, बाबा कहते हैं वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन करना, ऐसे नहीं इसने ऐसे किया ना इसलिए मेरे ऊपर प्रभाव आ गया। हम परिवर्तक हैं, हम परिवर्तन करने वाले हैं। तो मेरी वृत्ति से उस आत्मा की वृत्ति अगर गलत भी है तो वो परिवर्तन हो जाए, ये बाबा हमें कहते हैं। क्योंकि हम पावन बनाने वाले, हम पतित पावनी हैं, आत्माओं को प्रकृति को हम पावन बनाने वाले हैं। तो हमारी दृष्टि वृत्ति सदा ही शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो, वो तब होगी जब हमें आत्मा देखने का निरंतर अभ्यास होगा, जिसके भी संपर्क में हम आते हैं। तो ये मनसा की प्यूरिटी बाबा हमें तीनों स्तर पर कहता है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों स्तरों पर मन वचन कर्म में पवित्र। दुनिया वाले सिर्फ कर्म की पवित्रता तक ही रह जाते हैं, मनसा तक है या नहीं वो सूक्ष्म होता है, लेकिन बाबा कहता है कि सूक्ष्म में भी मनसा में भी हमारी पवित्रता चाहिए। तो मनसा की पवित्रता दृष्टि वृत्ति हमारी बिल्कुल हमेशा बाबा की श्रीमत अनुसार हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना भी हो। उसमें ये भी बाबा कहते हैं कि किसी के अवगुण को भी हम टच नहीं करें। अगर हम किसी के अवगुण को देखते हैं इन नेत्रों के द्वारा तो वो भी हमने अशुद्धि को टच किया, इसको भी सच्चा वैष्णव नहीं कहेंगे। जो संपूर्ण पवित्र हैं वो सदा गुणग्राही होंगे, यानी आत्मा के गुणों को ही देखना और उसको ग्रहण करना। अगर अवगुण को देख लिया तो उसका प्रभाव भी आत्मा के ऊपर पड़ेगा। तो ये भी मनसा की पवित्रता में आता है, क्योंकि सभी विकारों की बात है ना, केवल काम विकार की बात नहीं है। काम विकार फर्स्ट है सभी विकारों में, उस पर ज्यादा अटेंशन देना है, लेकिन बनना संपूर्ण निर्विकारी है। फिर वचन में हमारे मुख से जो वचन निकलते हैं वो वचन किसी को दुख तो नहीं देते, कड़वे वचन तो नहीं है, हमारे वचनों से किसी का अपमान तो नहीं हो जाता है, हमारे वचन किसी के प्रति दुर्व्यवहार का कारण बनते हैं ऐसा तो नहीं है। यानी वचन सदा ही सुख देने वाले हों, कर्म भी सदा सुख देने वाले हों, जिसको बाबा कहता है सुख दो सुख लो। कई बार हम सोचते हैं कि हम सच बोल रहे हैं ना, कोई बात को हमें सिद्ध करना है, कोई कुछ कहता है तो हम सच्चे हैं तो हम उसको थोड़ा जोश से बोलते हैं, सच बोल रहे हैं ना तो थोड़ा निर्भयता से जोश से बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं सत्यता में भी सभ्यता हो, ऐसे नहीं कि सच बोल रहे हैं तो जोश में आ जाए। तो जो सत्य होना चाहिए वो भी मीठा होना चाहिए, इसलिए संस्कृत में कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो पवित्रता का संबंध जो है वो सत्यता से भी है, प्यूरिटी ही रियलिटी है बाबा कहता है। और रियलिटी माना अंदर बाहर एक, जिसको बाबा सच्चाई सफाई कहते हैं। और इसीलिए बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी, क्योंकि वो सत्यम शिवम सुंदरम है। शिव बाबा सत्य ज्ञान हमें देते हैं और उस सत्य ज्ञान के द्वारा ही वो सतयुग की स्थापना करते हैं, यानी सत्य का युग। हमें सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। तो वो सतयुग में जाने वाली आत्माएं कैसी होंगी, तो भगवान को सत्य पसंद है। सत का मतलब बाबा दो बताते हैं, सत माना अविनाशी और सत माना सच्ची। तो जब भी हम किसी के व्यवहार में आते हैं तो जरा भी मिलावट बनावट नहीं होनी चाहिए, एक तो ये। नहीं तो कईयों का क्या होता है, अंदर में वृत्ति कुछ और होती है और बाहर में व्यवहार कुछ और होता है। ये कलयुग की निशानी है, इसको कहते हैं ना झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, है ना। तो आपके सामने बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, मीठा बोलेंगे, और आपके पीठ पीछे मौका मिलते ही आपकी बुराई करेंगे, आपके बारे में 10 ऐसी बातें बोल देंगे। तो एक कहावत आती है हिंदी में, मुख में राम बगल में छुरी। हाँ, मुख से तो राम राम नाम लेते हैं और फिर पीछे से क्या कर सकते हैं। तो ये कलयुगी मनुष्यों का व्यवहार होता है, लेकिन हम बाबा के बच्चे माना हमारी वृत्ति हर आत्मा के प्रति शुद्ध हो तो उसके साथ साथ हमारा व्यवहार भी शुद्ध हो। फिर बाबा कहते हैं मानो श्रीमत के विपरीत कोई कर्म हो जाता है हमसे, कोई ऐसी गलती हो जाती है, तो हमें बाबा को सच सुनाना है। अगर हम सच सुनाते हैं, सुनाने की विधि ऐसे नहीं कि बाबा तो जानता ही है ना हम क्या कर रहे हैं, नहीं। बाबा कहते हैं मैं जानी जानन हार नहीं हूँ। मुरली में तो बाबा ऐसे कहते हैं, भले जानी जानन हार है, बाबा ये भी कहते हैं मैं बच्चों का चार्ट जानता हूँ, मुझे कितना समय लगता है बच्चों का चार्ट देखने में। हाँ, मेरे पास ऐसी टीवी है कि हाँ एक बटन ऑन करके सारे बच्चों का एक साथ मैं देख सकता हूँ। लेकिन फिर भी विधि रखी है बाबा ने कि हमें बाबा को सुनाना है, क्योंकि उससे हमें रियलाइजेशन होता है, और जब हम रियलाइज करते हैं तो फिर हमें बाबा से शक्ति मिलती है। तो बाबा कहते हैं आधा वही माफ हो जाता है अगर हमने रियलाइज किया, और आधे के लिए फिर हम बाबा से जो शक्ति लेते हैं कि आगे के लिए हमसे फिर वो भूल ना हो। इसीलिए सच सुनाने की बात, अगर बाबा को हमने नहीं सुनाया, हम समझते हैं कि हमारा योग नहीं लग रहा है, तो जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उनके लिए भी बाबा कहते हैं कि हम चाहें तो उनको भी सुना सकते हैं। कई बार हमें लगता है बाबा को सुनाया लेकिन कोई उत्तर तो मिला नहीं, तो फिर अगर हमें उत्तर चाहिए तो फिर जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उन आत्माओं को हम सुना करके उनसे हम गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे हम मार्गदर्शन ले सकते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि हम अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं। ब्राह्मण जीवन में कई बार उसको युक्ति कहते हैं, माना मेरे से कोई गलती हो गई और वो गलती मर्यादा के विपरीत है तो हम अपने को छुपाने के लिए, यानी कहीं मेरा नाम खराब ना हो जाए, है ना, अपनी कमजोरी को कोई भी दिखाना नहीं चाहता है, हमेशा अपनी कमजोरी सब छुपाना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए क्या करते हैं, झूठ का भी अगर सहारा लेना पड़े तो झूठ बोल करके भी उसको सच सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, ये मेरा काम नहीं है, और अगर जरूरत पड़े तो दूसरे का नाम भी डाल देंगे बीच में, ना उसने ऐसा किया ना इसलिए ऐसा हुआ। तो अगर हम ऐसी चतुराई करते हैं जिसको बाबा कहता है चतुराई करना या हेरा फेरी करना, तो फिर बाबा कहते हैं कि भले आप यहाँ पर अपना नाम बचा लोगे, है ना, यहाँ ब्राह्मण जीवन में भले ही आप बड़ों के सामने अच्छे भी बन जाओगे, लेकिन बाबा को तो सब पता है ना, बाबा से तो कुछ भी नहीं छुपता है, तो भगवान के दिल में आपका नाम कहाँ होगा, विजय माला से आपका नाम हट जाएगा, सदा काल की प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे। अल्पकाल की प्राप्ति जरूर पा ली आपने, वो प्रशंसा मिल भी जाएगी आपको, आप सफल भी हो जाएंगे। कई बार सोचते हैं हम ऐसी चतुराई करके हम आगे बढ़ जाते हैं ना, नाम अच्छा होता है फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। दुनिया में भी ऐसे ही कहते हैं जो झूठे हैं बेईमान हैं वही आज सफल हैं, ऐसे ही कहते हैं ना, जो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले हैं सच्चाई को बहुत मुश्किल मानते हैं कि जो सच्चे और ईमानदार हैं उनकी क्या गति होती है, आज उनको खाने को भी नहीं मिलता है। कभी दुनिया वालों को भी बोलो तो वो ऐसे ही कहते हैं कि क्या रखा है सच्चाई ईमानदारी में, क्या मिलता है सच्चे बनने से। तो क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? मिलता है या नहीं मिलता है? तो सच्चाई की रास्ता मुश्किल जरूर है, बाबा कहता है सच की नाव हिलती है डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। अंतिम विजय किसकी है? अंतिम विजय सत्य की ही होती है। और सबसे बड़ी बात, बाबा के दिल में विजय अगर हमारी हो गई तो उसके आगे और क्या चाहिए, है ना? तो सत्यता हमें बाबा का दिल तख्त नशीन बनाती है, क्योंकि भगवान को सत्य ही पसंद है। तो सच्चाई सफाई ब्राह्मण जीवन में ये हमारी प्यूरिटी की रॉयल्टी है, उसकी निशानी है ये, कि जो पवित्र आत्माएं होंगी वो रियल भी होंगी। और जो सच्चा होता है वो सदा खुश रहता है, इसलिए कहते हैं सच तो बिठो नच, तो सदा हर्षित होगा। लेकिन ऊपर ऊपर का हर्षित नहीं, कई लोग ऊपर से खुश हैं ऐसा दिखाते हैं लेकिन अंदर में रियल में वो खुश नहीं होते। बाबा कहते हैं खुशी माना हर्षित चित होना चाहिए, हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए, बाहर की हंसी की बात नहीं। दुनिया में कई प्रोफेशन होते हैं जिनको बाहर से खुश रहना ही है, मतलब ये उनके लिए एक कायदा होता है कि उनको अपने कस्टमर से कैसा व्यवहार करना है। मानो जो रिसेप्शनिस्ट है किसी भी कंपनी का या किसी भी ऑफिस का, तो जो भी आने वाला है वो उसके साथ कैसी भी बात करेगा, उसे कैसे व्यवहार करना है? मुस्कुरा करके ही उसका वेलकम करना है, है ना? खुशी से ही उससे व्यवहार करना है, ताकि उसका वो कस्टमर चला ना जाए, उसका ग्राहक छूट ना जाए। जैसे कई दुकानदार होते हैं उनके लिए भी यही नियम होता है कि अगर हमें अपने ग्राहकों को बनाए रखना है तो ग्राहक कितना भी तंग करे हमको, लेकिन कैसा व्यवहार करना है? अच्छा ही व्यवहार करना है। तो यहाँ ये बाहर की खुशी की बात, यानी बाहर से वो मुस्कुराते हैं अंदर से वो खुश हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन जो आत्माएं पवित्रता की पर्सनालिटी वाली हैं और जो सच्चाई सफाई वाली आत्माएं हैं, वो सदा चित्त से प्रसन्न होते हैं, कभी भी उनके मन में प्रश्न नहीं होंगे। और बाबा कहता है जो हर्षित मूरत होते हैं वो आकर्षित मूरत भी होते हैं, यानी दूसरों की आकर्षण करने वाले होते हैं। जैसे कृष्ण के लिए हम कहते हैं कृष्ण नाम ही क्यों है, क्योंकि वो आकर्षण करने वाली पर्सनालिटी है। तो उनकी पर्सनालिटी की विशेषता क्या है? सदा प्रसन्न मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है। तो ऐसे देवी देवताओं की जो चेहरे की झलक है वो भी मुस्कुराहट वाली है। कोई भी मंदिर में जाएंगे तो उनके दर्शन करके क्यों प्रसन्नता हो जाती है, हमें खुशी हो जाती है? क्योंकि उनका प्रसन्न चित्त है। लेकिन जो आकर्षण मूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अटैचमेंट में आ जाएंगे। जितना प्यारे उतना ही न्यारे, न्यारे और प्यारे का बैलेंस होगा। ना तो कोई उनकी अटैचमेंट में आएगा और ना ही वो किसी की अटैचमेंट में आएंगे। तो ये विशेषता भी प्यूरिटी की पर्सनालिटी वाली आत्माओं की है कि वो आकर्षित मूरत होंगे, क्योंकि प्रसन्न चित हैं तो आत्माओं को आकर्षण करने वाले होंगे, लेकिन अटैचमेंट में कभी नहीं आएंगे। और वो आत्माएं सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहती हैं क्योंकि भरपूर हैं, और भरपूर होने के कारण उनके अंदर कभी भी मांगने के संस्कार नहीं होते। स्थूल या सूक्ष्म कोई भी चीज मांगने की बात अगर हम कहें, तो एक तो होता है कि स्थूल में हमारे पास कोई कमी है, जैसे कोई साधन की कमी है या कोई वस्तु की कमी है। तो कई लोगों के पास साधन वस्तु भरपूर होता है, वो कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी इच्छाएं और होती हैं, और भी चाहिए और भी चाहिए, तो कभी वे संतुष्ट महसूस नहीं करते अपने आप को। और ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास साधन वस्तु की कमी है, लेकिन फिर भी मन भरपूर है, तो वो होते हुए भी, कमी होते हुए भी कमी महसूस नहीं करते। इसको बाबा कहते हैं ना में भी हाँ महसूस करते हैं। ऐसे हम बहुत भक्तों को देखते हैं, सुनते हैं। हम अपनी बाबा को और दादियों को भी हमने देखा, पर एक जो भक्त हैं उनका मैं मिसाल सुनाती हूँ। एक भक्त रिदास थे, तो बहुत गरीब थे वो, नाम सुना होगा आपने, और वो जूते सिलाई का काम करते थे। बहुत साधारण सी उनकी झोपड़ी थी जिसमें वो रहते थे, लेकिन बहुत खुश, भगवान का नाम लेना, अपना काम करना, और उसमें ही उनको बहुत खुशी रहती थी। तो एक बार उनका नाम सुनकर के, उनका नाम बहुत था भक्ति में, तो नाम सुनकर के एक सन्यासी उनसे मिलने के लिए आए। तो जब उन्होंने उनकी हालत देखी कि ये कितनी गरीबी की हालत में रहते हैं, इनके खाने का भी ठिकाना नहीं होता है, तो उनको रहम आया उनके ऊपर। उनके पास एक पारस पत्थर था, तो उन्होंने उनको वो पारस पत्थर दिया और कहा कि क्यों आप इतने अभाव में रहते हैं, तो आप ये पारस पत्थर से जितना चाहिए अपने लिए सोना बना लो और इस गरीबी से मुक्त हो जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसमें ही खुश हूं, मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वैसे जबरदस्ती करके उन्होंने उनको वो पारस पत्थर दिया। तो फिर उन्होंने अपने हाथ में नहीं लिया, वहां एक आला बना हुआ था, उन्होंने कहा आप यहां रख दो और देखता हूं, ऐसा करके, और वहां वो रखवा लिया पत्थर। फिर वो चले गए उसके बाद, और वो रिदास भूल गए कि वो पारस पत्थर भी रख करके गए हैं, वो वहीं पड़ा रहा वैसे का वैसे ही। और एक महीने के बाद वो सन्यासी फिर कि मैं अपना पारस पत्थर ले आऊं, अब तक तो रिदास ने सब अपना काम कर लिया होगा और अच्छी स्थिति में रह रहे होंगे, अब तो उनके पास कोई कमी नहीं होगी। आए तो देखा वही झोपड़ी है और वही वो जूते सिलाई कर रहे हैं। तो आश्चर्य हुआ उनको, उन्होंने कहा कि वो पारस पत्थर का क्या किया। तो उन्होंने कहा आप जहां रख के गए थे वो वहीं रखा है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं जिस हाल में भगवान ने मुझे रखा है मैं उसमें बहुत खुश हूं। तो ना में भी हाँ का अनुभव करना, यानी बाबा जिसको कहते हैं ना कि पाना था सो पा लिया, यानी भगवान को पा लिया मैंने, सब कुछ पा लिया, जैसे व्यक्ति और वैभव उसमें ही समाया हुआ है, वो अनुभव करना। तो हम बाबा के बच्चों के लिए भी ऐसे ही है कि बाबा मिल गया माना सब संसार बाबा में समाया है, और आवश्यकताएं जो हैं वो तो हमारी पूरी होती ही हैं, इच्छाओं की बात होती है। तो इच्छाओं में अगर अधिक चले जाते हैं ना, अगर आवश्यकताओं की जो हद है वो हद से पार हो जाती हैं, तब बाबा कहता है कि वो इच्छा लोभ का अंश हो जाती है। तो उसमें फिर चाहिए 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 आता है कि मुझे ये भी चाहिए और मुझे ये भी होना चाहिए। फिर नाम मान शान में जो सूक्ष्म चाहिए है, सूक्ष्म मांगना है, वो भी है। नाम होना चाहिए, काम हम करते हैं लेकिन नाम तो किसी और का हो जाता है, हमारा नाम तो किसी में लेते ही नहीं है, या कोई सेवा का चांस होता है उसमें मेरा नाम तो आता ही नहीं है। तो बाबा कई बार इस बात को भी कहते हैं कि आप नाम के पीछे भी मत जाओ, क्योंकि ब्राह्मण नाम इस जन्म में जो है वो कितना ऊंचा है कि अब तक भी जो नामधारी ब्राह्मण हैं वो आपके नाम से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, आपके नाम से वो कमाई कर रहे हैं। और फिर आपका नाम कौन लेता है, स्वयं भगवान आपका नाम लेता है। भक्त भगवान के नाम की माला का सिमरन करते हैं, और बाबा किसके नाम जपते हैं, बाबा बच्चों का नाम जपता है, तो स्वयं भगवान हमारा नाम जपता है। तो फिर भगवान के दिल पर हमारा नाम हो गया, उससे आगे फिर हमें क्या नाम चाहिए ना। मनुष्य आत्माओं से नाम की इच्छा नहीं, वो रॉयल इच्छा, सूक्ष्म इच्छा जो है वो हो जाती है। फिर मान की भी बात बाबा कहते हैं, कुछ आत्माओं को लगता है ना हमें पूछना चाहिए, हमें मानना चाहिए, तो मान जहां आता है वहां बाबा ने कहा कितना श्रेष्ठ सोमान बाबा ने आपको दिया, स्वयं भगवान ने इतने ऊंचे ऊंचे टाइटल दिए हैं, दुनिया में किसी को नहीं है ऐसे टाइटल। दुनिया में जो बड़े से बड़े पर्सनालिटी वाले व्यक्ति भी माने जाते हैं, किसी को इतने टाइटल हैं जो बाबा ने हमें दिए हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान है, पद्मा पदम भाग्यवान है, देवात्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व के पूर्वज हैं, कितनी लंबी लिस्ट है। तो जब बाबा ने इतना सम्मान दे दिया और अपने से भी आगे रखा, बाबा से भी डबल पूछे हैं, बाबा कहते हैं आपके जड़ चित्रों को कितना रिगार्ड से देखते हैं, जिन जड़ चित्रों की पूजा होती है उन जड़ चित्रों को कितना विधि पूर्वक कितना सम्मान से उनकी पूजा करते हैं। तो चैतन्य में जरूर माननीय रहे तभी जड़ चित्रों का भी मान है ना, इतना सम्मान है। तो वो हमें याद रखना है, जो अविनाशी सम्मान हमें बाबा से मिला है। तो अगर हम सोमान में रहेंगे तो वो मान तो अपने आप आएगा। उसको कहता है, बाबा कहता है उसकी परछाई है। जैसे इच्छाओं के पीछे जाना कैसे है, परछाई के पीछे जाना है। परछाई कभी पकड़ में आती है, लेकिन अगर हम रोशनी की तरफ मुंह करते हैं तो परछाई अपने आप पीछे पीछे आती है। तो ऐसे ही अगर हम ज्ञान सूर्य शिव बाबा के साथ हैं, बाबा के सम्मुख हैं, तो ये सब प्राप्तियां अपने आप स्वतः ही दासी के प्रकृति दासी के रूप में बाबा कहता है अनुभव होती हैं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी सूक्ष्म चाहिए चाहिए भी नहीं। तो जो रॉयल आत्माएं होती हैं वो सदा भरपूर होते हैं, उनकी आंख कहीं डूबती नहीं है। आंख डूबने का मतलब जैसे दुनिया में भी देखते हैं ना, जो स्थूल में भी संपन्न आत्माएं होती हैं वो छोटी मोटी चीजों पर उनकी आंख नहीं जाती है, क्योंकि वो है उनके पास पहले से ही। जैसे हम कहेंगे हमने भोजन कर लिया, हमारा पेट भरा हुआ है, फिर कोई हमारे सामने एक 36 प्रकार के भोजन की थाली लाके रख दे तो हम खाएंगे क्या, कहेंगे नहीं अभी तो पेट भरा हुआ है अभी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तृप्त हैं हम। तो ऐसे ही जो संपन्न आत्माएं होती हैं वो ऐसा महसूस करती हैं कि सर्व प्राप्ति है, हमें और नहीं चाहिए। तो बाबा से हमें जो अविनाशी खजाने मिले हैं, अविनाशी प्राप्तियां हुई हैं, जब हम उनके स्मृति स्वरूप रहते हैं, जब बेहद की प्राप्तियों के स्मृति स्वरूप रहते हैं, तो ये हद की जो स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियां अप्राप्तियां हैं उनके पीछे हमारी आंख नहीं जाती है, और हम उसमें ही संतुष्टता का अनुभव करते हैं। और इसीलिए बाबा कहता है कि संतुष्टता ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है, और फिर उसमें प्रसन्नता की पर्सनैलिटी आ जाती है, जिसका संबंध हमारी प्यूरिटी से है, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी से है। और ऐसे ही जो पवित्र आत्माएं होती हैं, वो पवित्र आत्माएं सदा ही प्रत्यक्ष होती हैं, माना उनकी जो पर्सनैलिटी है। कई बार कई आत्माएं कहते हैं हम तो पवित्र हैं लेकिन गुप्त रहते हैं, हमारा पुरुषार्थ गुप्त है। तो बाबा कहता है कि हीरा कभी भी गुप्त नहीं रह सकता। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, यानी जो भी हमारे बाबा मम्मा हुए, दादियां हुई, उनकी रूहानी पर्सनालिटी कभी छुपी नहीं, वो पर्सनालिटी दिखाई देती रही। तो वो पर्सनालिटी दिखाई देती है, जो कहते ना कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, जो हमारे मन में है वो चेहरे पर जरूर आता है। तो हमारा चेहरा उसकी झलक जरूर दिखाएगा, वो पर्सनालिटी दिखाई देगी। तो दिखाई तो ये गुप्त रहने वाली बात नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं चेहरे और चलन से सेवा करो। तो कौन सा चेहरा और चलन? तो हमारे चेहरे से वो दिखाई देगा, वो पर्सनालिटी दिखाई देगी। तो जितना हम अपनी प्यूरिटी की स्टेज को बढ़ाते जाएंगे, जो हमने समझा कितनी सूक्ष्मता से बाबा हमें पवित्रता की परिभाषा समझाते हैं और वो कितनी ऊंची है हमारी पवित्रता की स्थिति, तो हम उसे सूक्ष्म में अपनी चेकिंग करके और उस पवित्रता की स्थिति को प्राप्त करें और बाबा के समान बने। ओम शांति।